मोक्षमार्गस्य नेतारम् धेतारम् कर्म भूव्रताम् ज्ञातारम् देशतत्त्वानाम् वन्दे सद्गुणलोके वन्दे सद्गुणलोके वन्दे सद्गुणलोके। सत्वार सूत्र नामक के महान शास्त्र और इसके पांच अध्यायों तक की चर्चा हम आपके बीच में पहले कर चुके हैं। यह छठा अध्याय जो यहाँ प्रारंभ हो रहा है, इस छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। आश्रव तत्व आगे बढ़ रहे हैं। पहले चार अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा हुई, पांचवें अध्याय में अजीव तत्व को मुख्य करके जीव को भी साथ में रखा, द्रव्य सामान्य की चर्चा हुई। अजीव तत्व की चर्चा पंचम अध्याय में, अब यह छठा अध्याय जिसकी चर्चा यहाँ से की जा रही है, इसमें आश्रव की बात है। कि आश्रव क्या होता है? आश्रव क्या होता है? पाप का आना, पुण्य का आना भी आश्रव है, कर्म का आना। आते कैसे हैं कर्म? अभी देखिए, जो शिष्य उमा स्वामी आचार्य के सामने बैठा है वो कुछ नहीं जानता है, वो तो कुछ भी नहीं आता है। आश्रव क्या होता है ये वो समझता नहीं है। इसलिए जैसे ही उस शिष्य ने पूछा तो आचार्य देव ने जवाब दिया, काय वांग मन है कर्म योग है। बोलिए, काय वांग मन है कर्म योग है। क्या मतलब हुआ इसका? काय माने शरीर, वांग वचन, और मन है माने मन। तीन तीन चीजें, काय वांग मन है, शरीर वाणी और मन, कर्म। इनका जो कर्म है, इनकी जो प्रवृत्ति है, इनका जो हलन चलन है, कर्म माने प्रवृत्ति, कर्म माने हलन चलन, हिलना डुलना आदि, वो सब क्या है? योग है, योग है। काय वांग मन है कर्म। किस किस का कर्म? काय का कर्म, वचन का कर्म और मन का कर्म, ये कहलाता है योग। इनके निमित्त से आत्म प्रवेशों की चंचलता होती है। योग किसे कहें? आत्म प्रवेशों की चंचलता को। और प्रवेश क्या होते हैं ये तो बताया था आपको कल, लीजिए ना अपने चर्चा। प्रवेश क्या होते हैं? आत्मा का एरिया वो प्रदेश है। प्रदेश माने उसका पूरा का पूरा एरिया, आत्मा का, वस्तु का। तो आत्मा के इस एरिया का नाम प्रदेश, और उन प्रदेशों में होता है कंपन। तो प्रदेशों का जो कंपन है वो कंपन कहलाता है योग, उसे योग कहते हैं। काय वांग माने कर्म योग है। और फिर आगे कह दिया, मानो शिष्य ने पूछा हो कि महाराज मैंने तो आश्रव पूछा था, आप योग बता रहे हो। मैंने तो आपसे ये पूछा था आश्रव क्या होता है, आप योग बताने लगे। तो कहा सौ आश्रव है। आगे नेक्स्ट सूत्र क्या लिखा? सह आश्रव है, यही आश्रव है। आश्रव कुछ और अलग नहीं होता। शरीर मन और वाणी की जो प्रवृत्ति है और इससे कर्म परमाणुओं का जो आना होता है वही आश्रव कहलाता है, और आश्रव कुछ भी नहीं होता। देखिए, यद्यपि शरीर मन वाणी अलग है और आत्म प्रदेशों की चंचलता अलग है, समझ आ रही है बात? शरीर मन वाणी ये तीनों पुद्गल हैं, और आत्मा की चंचलता वो चेतन है, वो आत्मा का काम है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, लेकिन इन दोनों में निमित्त निमित्त संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर चल रहा हो और आत्मा निष्कंप हो जाए। कल हमने बताया था कि ये शरीर में है आत्मा, तो शरीर हिल रहा है आत्मा भी हिल रहा है, शरीर के शेप के अनुसार आत्मा का शेप बदल रहा है। तो जैसा शरीर उसी तरह से आत्मा प्रवर्तन करता हुआ दिखता है, ये घना संबंध है, निमित्त निमित्त संबंध। इस निमित्त निमित्त संबंध को ध्यान में रखना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो आत्म प्रदेशों की चंचलता को योग कहा गया और उसी को आश्रव कहा गया। देखिए इससे होता क्या है, इस आश्रव से ये आश्रव क्या है, मतलब आश्रव हो गया, अकेले में आश्रव हो गया, हमारे को समझ में नहीं आया कुछ भी, तुमने कहा आश्रव हो गया तो आना चाहिए। हुआ क्या, तो कहे शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य, शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य। क्या हुआ, शुभ है पुण्य, शुभ से तो पुण्य है, और अशुभ है पापस्य और अशुभ से पाप है। क्या कहा, यदि आपकी मन की प्रवृत्ति, आपके वाणी की प्रवृत्ति, आपकी काय का प्रवर्तन यदि ये शुभ के लिए हुआ है तो पुण्य का आश्रव होगा, और यदि ये अशुभ के लिए हुआ है तो पापाश्रव होगा। दो तरह के आश्रव हो गए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा कैसे निर्भर करेगा, किससे निर्भर करेगा कि पुण्य बंध रहा है कि पाप, कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप वचन क्या बोल रहे हैं, आप काय से क्या कर रहे हैं। यदि आपकी काय जिन मंदिर में है, भक्ति में संलग्न है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, काय काय की स्थिति, तो पुण्य आश्रव है। आपके वचन यदि भक्ति स्तुति बोलने में लग रहे हैं तो शुभ में लग रहे हैं। आपके मन में यदि भगवान का स्वरूप और आत्मा के स्वरूप का चिंतन चल रहा है तो शुभ की तरफ चल रहा है, शुभ है पुण्य से। समझ आ रही बात, अच्छा शुभ का क्या निर्णय करें, शुभ किस कैसे माना जाए, बोलो, प्रश्न खड़ा हो गया दिमाग में, शुभ किसको कहें साहब। हर व्यक्ति ये कहता है मैं शुभ कर रहा हूं, कोई अशुभ करता ही नहीं। बोलो अभी यदि यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कोई गलत काम करते हो क्या, अरे पंडित जी आज तक कोई गलत काम नहीं किया मैंने, ऐसा इतना ईमानदार, आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है, अच्छा ही है क्या ये, तो फिर तो पाप बनता ही नहीं होगा, आप तो पुण्य ही पुण्य बांध रहे हो, इसका मतलब बहुत पुण्य बांधा है। आपको पता नहीं आपकी देह की प्रवृत्ति नहीं कर रहा, वो नियम से विराजना करता है। क्या क्या कहा मोहित भाई, जो आराधना नहीं कर रहा वो नियम से विराजना कर रहा है। इसका मतलब जो धार्मिक क्रियाओं में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, पंच परमेश्वरियों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जिसका उपयोग नहीं लग रहा है, जिसके उपयोग में आत्म स्वरूप और वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं चल रहा है, इसका मतलब नियम से पाप कर रहा है। समझ में आती है बात, कौन से पाप की बात कर रहा हूं, इसको तो ऐसा लगता है हत्या करना ही पाप है, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, मैंने किसकी क्या चोरी कर ली, आज तक चोरी नहीं की मैंने, टैक्स चुराता है वो चोरी नहीं, चोरी करने का भाव आ जाता है, पर वस्तु को उठाने वो चोरी नहीं, लोगों का जो परिणाम है ये पाप नहीं है, दिन रात भोगों भोगों में लगा रहता है, ये भी तो पाप ही है ना आखिर, इसको पाप ही नहीं लगता है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, घर व्यक्ति में नहीं रहेंगे क्या? अच्छा अभी क्या करके आए बतलाओ, एक प्रवचन खत्म हो जाने के बाद बाहर निकल करके क्या करके आए, इसमें क्या पाप कर लिया? खाना तो खाएंगे, भोजन तो करेंगे ही ना, लेकिन भोजन करना ये पुण्य का काम है कि पाप का? पाप प्रवृत्ति है, ये भोग है रसना इंद्रिय का, एक शुदा वेदना से निवृत्ति के लिए करता है, ये संतुष्टि के लिए करता है, मानसिक संतुष्टि के लिए करता है, पेट भरने के लिए करता है, स्वाद के लिए करता है, भोग नहीं है ये, रसना इंद्रिय का उपभोग नहीं है। इस पर चल रसना इंद्रिय का उपभोग नहीं किया आपने, बतलाओ मुझे। ग्रहण चक्षु इंद्रिय का भी उपभोग किया है, भोजन करते समय गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया गर्म करके लाओ, शिकायत कम होगी। पेट भरने के लिए गर्म और ठंडे का क्या फर्क पड़ता है बता? नहीं गर्म हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, थोड़ा नमक डालो इसमें और लेमन है क्या, ये क्या है ये बताओ? ये रसना इंद्रिय का विषय देखता है, समझ रहे हैं आप? सुगंध कैसी आ रही है, थोड़ा सा देखने में कैसा दिख रहा है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही। देखो चित्त को आकर्षित करने के लिए आजकल ये सब बहुत सजाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट आपको ऐसे ऐसे सजा करके डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, आपका मन अट्रैक्ट हो जाए उसके प्रति। ये चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, और फिर कर्ण इंद्रिय का विषय भी अच्छा होना चाहिए, प्रेम से बात करके कोई खिलाए। खा लो चुपचाप, मन ही नहीं होता खाने का। ये क्या हुआ बताओ मुझे? अब पांचों इंद्रियों के भोगों को भोग रहे हैं आप, तो ये क्या पुण्य काम कर रहे हैं? ये पाप नहीं दिखता है हमारे को? पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हुए भी इस जीव को ऐसा लगता नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ, इतना हैबिचुअल हो गया है, इतना अभ्यस्त हो गया है। सुनो एक वाक्य कहा हमने, जो आराधना नहीं कर रहा, जो जिनेन्द्र देव की आराधना नहीं कर रहा, जो पंच परमेश्वरों की आराधना नहीं कर रहा, जिसका मन जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में नहीं है, जिसका मन स्तुति में नहीं है, जिसका मन स्वाध्याय में नहीं है, जिसका मन तत्व चिंतन में नहीं है, तो इन बातों को छोड़ के फिर कहाँ जाएगा? आराधना में। बोलो सोनू निगम आया है आपके यहाँ? मोहित जी चले, हम क्या पाप कर रहे हैं? हमने क्या पाप किया? ऐसा ये कर्णेन्द्रिय का विषय है, ये भोग का परिणाम है, ये पाप है। मुझे बतलाओ वो वहां जाओगे तो भजन सुनाएगा तुम्हारे को? तो आराधना नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति आराधना नहीं कर रहा है वो नियम से, आप सो रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, आप नहा धो रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, आप घर गृहस्थी के जो भी कार्य कर रहे हैं आप पाप कर रहे हैं, तो फिर आप चाहते क्या हो, जान लोगे क्या हमारी? अच्छा चाहते क्या हो? तो हमने कब कहा कि गृहस्थ पूरा पाप से मुक्त हो जाएगा? गृहस्थी में है तो पाप तो होगा ही, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, ये बता रहे हैं। कौन समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में से ये बात, ये भ्रम निकल जाए कि मैंने कोई पाप नहीं किया इसलिए मैंने इतनी बात कही है। फेसबुक पर लाइक से इंतजार करता रहता है कितने लाइक हुए एक पोस्ट करने के बाद में, एक फोटो पोस्ट करता है और दिन में 10 बार देखता है अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, कमेंट किस किस ने किया, तो क्या कर रहा है बता? छोड़ दिया ना, छोड़ दे उसको, अब क्या है, अब क्यों उसमें लगा हुआ है? पहले ऐसे कहावत चला करती थी, नेकी कर कुएं में डाल, आजकल ये चलता है कुछ भी कर व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल। धर्म कर रहे हैं हम, धर्म हो रहा है साहब आजकल तो, धर्म भी फेसबुक पे हो जाता है। महेंद्र भाई एक सज्जन मिले मेरे को, बहुत कहा करता था मैं उनको, यार स्वाध्याय किया करो स्वाध्याय किया करो, करते ही नहीं थे कभी, मिले मेरे से तो मैंने कहा यार कुछ, अरे पंडित जी आजकल तो खूब धर्म कर रहे हैं, खूब धर्म हो रहा है, खूब धर्म हो रहा है, कब करते हो आप मंदिर को आते नहीं हो, देखा नहीं मैंने आपको स्वाध्याय में, देखा नहीं आपको। बोले नहीं नहीं ये है ना, ये इससे खूब आता है आजकल, व्हाट्सएप पर खूब ज्ञान आता है, खूब स्वाध्याय होता है, ये स्वाध्याय हो रहा है तुम्हारा, कितने मैसेज पढ़ता है तू ये बिना देखे फॉरवर्ड करता रहता है, बता कितने आते हैं उनमें से कितने पढ़ता है और कितनों के बारे में चिंतन करता है। कह रहा है ना मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म तो बहुत दूर की बात है, पुण्य भी नहीं हो रहा है। शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, सूत्र बहुत मार्मिक है। जैन धर्म यहां खत्म नहीं होता है, जैन धर्म तो आगे चल करके बात करेगा। आखिर पुण्य पाप में ही अटका करके रख दे रहे तो जैन धर्म में और दूसरे धर्मों में अंतर क्या रहा? सब धर्म वाले कहते हैं पाप मत करो पुण्य करो, सब धर्म वाले कहते हैं। और हमने भी यदि इतनी सी ही बात की तो फिर क्या फर्क रहा मोहित जी, बतलाओ। हमने यदि यहाँ आकर के आपको ये उपदेश दिया पाप मत करो पुण्य करो, पाप मत करो पुण्य करो, पुण्य करो पूजन करो भक्ति करो विधान करो आयोजन ये करो, हमने भी यदि तुम्हें इसी में लगाए रखा तो पाप से बचा करके पुण्य में लगा दिया, ये धर्म नहीं हो गया? तुमने क्या किया यहाँ आकर के मंदिर में प्रसाद कर लिया, पूजन कर ली, कुछ अर्घ चढ़ा दिए, क्यों किया भाई साहब तुमने ये सब? अरे साहब ये सब धर्म है कि क्यों? ये सब धर्म कैसे बताओ तो सही, ये सब धर्म है, ये करना धर्म है। तो हमारा प्रश्न ये है यदि ये करना धर्म है तो फिर मुनि बनने पर ये सारी चीजें छोड़ क्यों देता है? प्रश्न है मुकुंद भाई मेरा, मुनिराज के लिए भी थाली लगाओ ना अर्घ चढ़ाने के लिए, नहीं नहीं वो नहीं करते, क्यों क्यों नहीं करते? धर्म है करो ना, कि नहीं ये करना धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या है? ये जो कर रहे हैं इसके साथ में तेरा परिणाम कहाँ लगा है उससे संबंध है, फल तो परिणामों का लगता है। आगे आने वाले 3 दिन करेंगे चर्चा विस्तार से, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन विस्तार से चर्चा करेंगे और वो चर्चा करेंगे हम प्रोजेक्टर के माध्यम से, विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ अलग हटके चर्चा करेंगे आपके बीच में, इसी 6वें अध्याय की चर्चा करेंगे, इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, फल किस बात का लग रहा है बोलो? पाप कहाँ है और पुण्य कहाँ है? प्रवृत्ति को तो सब देख रहे हैं, काय वांग मन है, काय को देखता है, वांग वचन को भी देखता है लेकिन मन को नहीं देखता है। क्या लिखा है उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे? काय वांग मन है, कर्म योग है, और सुनो काय से जितना कर्माश्रव होता है उससे कई गुना ज्यादा वचन से होता है, और वचन से जितना होता है उससे कई गुना ज्यादा मन में होता है। ऐसा है, शरीर की प्रवृत्तियां तो सुधर जाती है भाई, ये प्रवृत्तियां तो सुधर जाएगी, गवर्नमेंट रोकेगी, समाज रोकेगी, पब्लिक रोकेगी, पाप नहीं करने देगी। आप कितने पाप कर सकते हो बताओ? शरीर से, देह से पाप करने की बात कही जाए तो एक लिमिटेशन है, मर्यादा में रह करके समाज में रहते हैं आखिर हम लोग, एक मर्यादा में रह करके प्रवर्तन होता है, जो भी प्रवृत्ति होती है वो एक सीमित दायरे में होती है काय शरीर की, लेकिन वाणी से फूट पटांग बोलता है। किसी को मार नहीं सकते आप, गवर्नमेंट सजा देगी, लेकिन जवान से न मालूम कितनों को कह देते हैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जवान से, जवान से भी बोलता है तो इसका कितना पाप लगता है, गवर्नमेंट कितनी सजा देती है, कुछ भी नहीं। किसान ये मेरे को बहुत धमकी दे रहा है और जाकर के पुलिस में कंप्लेन लिखाओ, इसने बहुत मेरे को मारने की धमकी दी, तो क्या कहेंगे पुलिस वाले? तो भाई साहब मारा थोड़ी नहीं तुम्हारे को, यह मार देता तो फिर मैं यहाँ कहाँ से आता लिखाने के लिए? जवान की कोई सजा नहीं है इस लोक में, लेकिन जवान से पाप काया की तुलना में ज्यादा होते हैं, काया से जितने पाप होते हैं उसकी तुलना में मन से होने वाले पाप उससे भी ज्यादा होते हैं। शरीर से होने वाले पाप को गवर्नमेंट रोक रही है, शरीर वाले पाप को किसने रोका? गवर्नमेंट ने रोका। वाणी से होने वाले पाप को समाज ने, सोसाइटी ने रोका। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। आप कहाँ बैठे हैं? आप सभ्य लोगों के बीच में बैठे हैं, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आप इस भाषा में बात नहीं करेंगे। अनजान व्यक्ति भी टोक देगा आपको, नहीं सर अच्छा नहीं है, अच्छी अच्छी बातें बोलो आप। इसका मतलब जवान से भी खराब बहुत हद तक नहीं बोलता। क्यों? लोग बैठे हैं लेकिन मन में कुछ भी चल रहा है तो इसे कौन रोकेगा? मन में आने वाले खोटे भाव को कौन रोकेगा? मन में चलने वाले पाप को कौन रोकेगा? कंट्रोल वहां होना चाहिए, मन से कंट्रोल करो। वचन अपने आप कंट्रोल में होंगे, मन और वचन पर यदि कंट्रोल होगा तो काया अपने आप कंट्रोल में होगी, एक्शन भी नहीं होगा, मान सावधानी होगी। कहां से कंट्रोल करें, किधर से किधर चलें, ये संभालता है शरीर को सबसे पहले। ये कहता है योगा करो, ध्यान करो, अरे तुम मन को संभालो। काय वांग मन है, कर्म योग है, और शुभ है पुण्य से, अशुभ है पाप से। काय वांग मन है, कर्म योग है, आश्रव है भाई, आश्रव है शुभ है पुण्य से, अशुभ है पाप से। आश्रव दो प्रकार का है, दो प्रकार के कर्म परमाणु तुम्हारे आत्मा के साथ में आकर के बंधते हैं। कारण क्या है बंधने का, असली कारण क्या है? ये जो आश्रव हो रहे थे, इन आश्रव के और भेद भी बतलाए और कारण सहित चर्चा की। आगे सूत्र दिया है एक, सकषाया कषायो, सकषाया कषायो, सांपराई केरिया पथयो, सांपराई केरिया पथयो, सकषाया कषायो, सांपराई केरिया पथयो। क्या क्या कह दिया इन्होंने? सकषाया, सकषाया कुछ तो कषाय वाले लोग हैं, और अकषाय दो शब्द दे दिए, सकषाय कषाय वाले लोग और अकषाय कषाय नहीं करने वाले भी। कौन कौन है कषाय करने वाले? कौन है? पहले गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक के जीव सब कषाय करने वाले लोग हैं, कषाय सबके तारतम्य रूप भेद है। पहले वाले की जितनी कषाय हैं, चौथे वाले की उससे कम है, चौथे वाले की जितनी कषाय हैं, पांचवे वाले की और कम है, छठे सातवें वाले की और कम है, आठवें नौवें दसवें में और कम कम होती गई, लेकिन कषाय तो है। सब कषाय जीव कहलाते हैं वो सब, और अकषाय कौन कहलाते हैं? ग्यारह बारह तेरह चौदह ये अकषाय है। ग्यारहवें गुणस्थान से ऊपर वाले जीव ये सब क्या कहलाएंगे? ये अकषाई कहलाएंगे। ग्यारह बारह तेरह, तेरह तक लगाना, क्योंकि चौदहवें में है नहीं आश्रव, अयोग हो जाते हैं तो योग नहीं है, योग नहीं है इसलिए चौदहवें गुणस्थान में आश्रव नहीं है। समझ में आ रही है बस? क्योंकि आश्रव का कारण क्या था? काय वांग मन है, कर्म योग है, योग और से आश्रव है, योग से आश्रव है। अब योग जहाँ तक है वहां तक आश्रव है, यहाँ योग नहीं है वहां आश्रव नहीं है। चौदहवा गुणस्थान अयोग केवलियों का गुणस्थान होता है, अयोग केवली चौदहवे गुणस्थान का नाम। तेरहवे का नाम क्या है? सयोग, सयोग केवली। इसका मतलब अरहंत भगवान के भी आश्रव हो रहा है, योग है वहां, योगों की चंचलता है और उस योगों की चंचलता से अरंत भगवान के लिए आश्रव है। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ, एक बात तो ये कि कषाय वालों का आश्रव और दूसरी बात अकषाय वालों का आश्रव, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। दो भेद कर दिए, सकषाया अकषायो, आधा सूत्र हो गया, सकषाया अकषायो माने कषाय वाले लोग और बिना कषाय वाले लोग। फिर शब्द दिए सांपरायिक और एरियापति हो, इसी सीरियल से लगेगा मयूर भाई, सकषाय सकषाय और अकषाय, फिर सांपरायिक और एरियापति।
تو سامپرائے کس کے ساتھ میں جڑا؟ کشائے والوں کے ساتھ. ایریاپت کس کے ساتھ میں جڑا؟ اکشائی جیووں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جن جیووں کے کشائیں ہوتی ہے ان کے سامپرائے کا آشرم ہوتا ہے, اور جن کے کشائے نہیں ہوتی ان کے ایریاپت آشرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جن کے کشائے ہوتی ہے ان کے سامپرائے کا آشرم ہوتا ہے, اور جن کے کشائے نہیں ہوتی ہے اور آشرم ہو رہا ہے تو وہ ایریاپت آشرم ہوتا ہے. کیا ہوتے ہیں یہ کشائے والوں کے جو آشرم ہوتا ہے نا, وہ اکیلا آشرم ہی نہیں ہوتا, وہ آشرم ہو کر کے لمبے سمے تک کے لیے بند جاتا ہے. کشائے کے کارن اس میں استھتی بند پڑتا ہے, اس میں انوبھاگ بند پڑتا ہے. کشائے سے استھتی اور انوبھاگ بند ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ جکڑ لیا جاتا ہے کشائے والا جی. اور اکشائے والے کے کیا ہوتا ہے؟ ایریاپتاشرم کیا ہوتا ہے؟ ایریاپتاشرم ایسا ہوتا ہے موہت جی, جیسے سوکھی دیوار پر ہم نے دھول پھینکی, کتنا ہی نہیں تھی, دھول ٹچ ہوئی نیچے گر گئی, چپکی نہیں اس کے اوپر, ٹچ تو ہوئی لیکن. تو یہ آتما کے چنچلتا کی وجہ سے, یوگوں کی چنچلتا کی وجہ سے گیارہویں بارہویں اور تیرہویں گنستان میں یہ چنچلتا ہونے سے کرم آتے تو ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آنے کے بعد آتما کے پردیشوں میں راگ کی چکنائی نہیں ہے, کشائیوں کی چکنائی نہیں ہے, اس لیے وہ کرم آ کر کے چپکتے نہیں ہیں, وہ ایریا پتا آشرم کہلاتا ہے. منیراجوں کی اترشت اوستھا ہے گیارہواں بارہواں گنستان. تیرہویں گنستان میں تو ارنت بھگوان ہوتے ہیں, شیر شنکر پرماتما ہوتے ہیں, سامان کیولی ہوتے ہیں, ساتھی سے کیولی ہوتے ہیں. ارہنتوں کا ہے تیرہواں گنستان. اس تیرہویں گنستان میں بھی شوک چنچلتا ہے بھائی صاحب, کرم تو آ رہے ہیں لیکن رکیں گے نہیں, چپکیں گے نہیں, ٹکیں گے نہیں. یہ ٹکیں گے کب؟ جب کشائے ہوگی, ان کے کشائے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آشرم کا اصلی مول کارن کشائے ہے. اس میں کیا دم ہے یوگوں کی چنچلتا کو آشرم کہنے میں؟ ارنتوں کے بھی ہو گیا لیکن کیا بگاڑ لیا, کرم تو بندھا لیکن بندھا ہی نہیں, آیا ٹچ ہوا لیکن چھوٹ گیا, کیا فرق پڑ گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ جو دھوبی لوگ ہوتے ہیں, دھوبی, یہ پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں, آج کل تو یہاں بھی نہیں, یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ہندوستان میں بھی نہیں ہوتا. پہلے وہ کپڑے دھونے کے لیے دھوبی گھاٹ پر جایا کرتے تھے, کپڑے دھونے کے لیے وہ گھاٹ پر جاتے تھے, ندی کنارے کپڑے وپڑے دھوتے تھے, اور پھر دھو کر کے جتنے کپڑے ہوا کرتے تھے ان سب کپڑوں کو صابن سے دھونے کے بعد, ندی میں دھو لینے کے بعد ان کو وہیں زمین پر پٹک دیتے تھے ریت میں. ہم جیسے کوئی شہر کا ویکتی پہنچ جائے تو کہ پاگل ہو گیا, ابھی تو دھویا ہے اس کو, ابھی تو صابن سے صاف کیا ہے, دھویا ہے, اب یہ دھول میں پٹک دیا ہے اس کو, دھونے کے بعد واپس گندا ہو گیا نا؟ نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ دھویا کیا تھا؟ چکنائی دھوئی تھی, میل دھویا تھا, اس میں چکنائی کا جو انش تھا وہ پوری طرح سے صابن سے دھو کر کے نکال دیا. اب کیا ہوا؟ اب اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا. سنو, پانی سوکھ جانے کے بعد کپڑے کو ایسے اٹھا کر ایک جھٹکا دے گا اور ساری دھول صاف. کچھ بھی نہیں, وہ جانتا ہے اس چیز کو, چکنائی نہیں ہے, یہ دھول چپکی تو ہے چینٹ ہی نہیں ہے, یہ دھول ٹچ تو ہوئی ہے کپڑوں کے لیکن چینٹے گی نہیں, کیونکہ چکنائی نہیں ہے. راگ اور کشائیوں کی چکنائی کے کارن جو ہوتا ہے آشرم بند, وہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے, وہ پیڑا اتپن کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کشائے ابھی کر رہے ہیں, کل کب تک بھگتے گی؟ جنم جنمانتروں تک بھگتتا رہے گا ایک سمے ماتر کی کشائے کو لے کر کے. یہ کشائے کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سوچتا ہے मुकुंद भाई ऐसा कहता है, वो आए थे सबक सिखा दिया मैंने उनको, ऐसी डांट लगाई आगे से भूल जाएगा गलत काम करना। ये सुन, ये जो तुमने डांट लगाई है ना, ये उसको नहीं लगाई है ये तेरे इस क्रोध कषाई के परिणाम से तूने जो आश्रम किया है उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा। सोच रहा है उसको सिखा दिया, उसको समझा दिया कि तूने उसको तो सिखा दिया ना, अब जो कर्म बंधा है ये तुझे सिखाएगा मैंने सबक सिखा दिया, तूने सिखा दिया ना उसको, अब तेरा काम तो खत्म हो गया, अब तेरी भी तो सीखने की बारी है, अब जो कर्म बाधा था वो किसको सिखाएगा, तो तुझे सिखाएगा। तो दो तरह के आश्रम हो गए, नाम याद हो गए होंगे आप लोगों को, कौन कौन से, साम पराई का आश्रम और ईर्ष्यापथ आश्रम, सांपरायिक और ईर्ष्यापथ। चलिए, सांपरायिक किसके होता है, कषाय वालों के, कौन से गुण स्थान तक, दसवें तक, और ईर्ष्यापथ किसके होता है, ग्यारह से ऊपर वालों के, ग्यारह बारह तेरहवें गुण स्थान में। क्यों होता है, चंचलता के कारण, क्यों चंचलता के कारण, आप कुछ कह रहे
हैं, ये आपने जो कहा
हाँ,
तो जो ग्यारह और बारह में जो तीसरा का प्रगति है,
हाँ,
तो और केवल जब सदस्य भाषी का जो सब खत्म हो
जाए तो थोड़ी उन्हें प्रश्न समझ रहा है कि क्या किया, प्रश्न बोलता हूँ मैं, ये कॉन्फ्रेंस पर जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग भी सुन ले रहे हैं, एक बार यहाँ बैठे हुए के अलावा बात ऐसी पूछी कि दसवें गुणस्थान तक तो सांप्रदायिक आश्रम का, अब ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान में वीतरागता 100% है, क्या भाई साहब, वहाँ कषाय रंच मात्र भी नहीं है। शास्त्रों में तो इतना तक कह दिया गया है, ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी हैं, 100% पूर्ण सुखी है वो, क्योंकि कषाय नहीं। और तेरहवें गुणस्थान वाले वो अनंत सुखी है, ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी है, तेरहवें गुणस्थान वाले अनंत सुखी है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो पूर्ण सुखी हो गया, जिनके कषाय रंच मात्र भी नहीं है, जो अरहंत बन गए, जो भगवान बन गए, अब उनके भी ऐसा अवधिक, उनके भी कर्म का आश्रम, ये ईर्ष्यापथ वाला कंसेप्ट को समझ में नहीं आ रहा हमारे को, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कषाय से जो आश्रम होता था उसमें स्थिति बंद पड़ता था, अनुभव होता था, कषाय नहीं है तो स्थिति नहीं पड़ी, आने से क्या फर्क पड़ गया, आ जाओ दरवाजे से वापस चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ गया
है,
एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको, तो क्या होगा बताओ, उसी टाइम छूट जाता है, उसी टाइम, एक समय भी नहीं लगता है, दरवाजे तक आया और हमने एक्सेप्ट नहीं किया कुरियर, तो वापस, आप एक्सेप्ट कर लोगे तो रह जाएंगे, इसलिए देखो कर्मों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो बेचारे रुकते हैं, हम यदि नहीं रखे तो नहीं रहेंगे, गलती किसकी है, अरे नहीं कर्मों की गलती है, हमारे घर में गुजरे कर्म, आपके घर में गुजरे कर्म, आपको तकलीफ दे रहे हैं, नहीं भाई ये कर्म आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तुम तकलीफ अपने परिणामों से पा रहे हो, अपने आप से पा रहे हो, कर्म तुझे दुखी नहीं करता, कर्म तेरे घर में जबरन नहीं आया है, तुमने डांट लगाई कर्म को तो कर्म ने कहा ए मिस्टर इन्विटेशन दिया था इसलिए आए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपने इन्विटेशन दिया था इसलिए आए हैं, और ध्यान रखना दोबारा इन्विटेशन मिलेगा तो हम आए बिना रहेंगे नहीं, अपने आप को संभालो, तुमने ऑर्डर किया है मोबाइल पर, मोबाइल चेक करो अपना, यानी गलती से दब गया था, गलती से दबेगा तो भी आएंगे हम, होता है कि नहीं ऐसा, तो गलती अपनी है, कर्म की कोई गलती नहीं है, कर्म का कोई कसूर नहीं है, अपनी गलती को पहचानता नहीं है, कर्म के ऊपर दोष देता है, अपनी गलती क्या है मोहित भाई, एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट किया, उसको रोक लिया, चिकनाई, ये चिकनाई ने उन कर्मों को चिपका लिया। वो चिकनाई ही तो अपनी गलती है, और वो चिकनाई किस चीज की है? राग, वैषाय, मोह, अपनापन, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सब कषाय चौकड़ियां। ये चांडाल चौकड़ी है, ये कषाय चौकड़ी चारों तरफ से घेर लेगी और मारेगी, फिर सजा मिलेगी, फिर चारित्र मोहनी के उदय से होने वाले परिणामों में फिर भुगतेगा नरक में जाकर के उस परिणाम को। तो ईर्ष्या पर आश्रव हो गया हितरागियों के, और रागियों के हो गया सांपरायित आश्रव। तो सांपरायित ईर्ष्या पतियों हो सकषाय आकषाय हो, कषाय वालों के और आकषाय वालों के। सब तेरे तक की चर्चा की, चौदहवें में क्या होगा कह दिया ना, चौदहवें में वहाँ आश्रव नहीं होता, कषाय नहीं है इस वजह से। चलिए आगे वाले सूत्र की तरफ पढ़ते हैं। आगे वाले सूत्र में क्या कहते हैं आचार्य जी? इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। बहुत बड़ा है, नहीं बोलोगे आप लोग? अरे लेकिन टुकड़े किए हैं ना, बीच बीच में डैश लगा रखी है, क्यों डर रहे हो आप? बिल्कुल सही पढ़ दिया आप लोगों ने तो। आप तो सोच रहे थे आप नहीं पढ़ पाओगे, ये विश्वास जगाओ अपने अंदर में, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। ये इन्होंने कहा है पंच पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। ये जितने कहे हैं ना ये आश्रवादिक सांप्रदायिक आश्रव, इनके भेद प्रभेद बतलाए हैं इसने। सबसे पहले कहा इंद्रिय, इंद्रिय कहा, फिर कहा कषाय, इंद्रिया पांचों इंद्रिया, फिर कषाय, फिर अव्रत, अव्रत के बाद क्रिया, और इन सब के बाद में काउंटिंग बता दी इनकी। पंच माने फाइव, चतुर माने चार, पंच माने पांच, और पंच विंशति माने 25 संख्या। ये सब संख्याएं हैं पूर्वस्य भेदा कहने वालों की। नहीं समझ में आया क्या कह दिया आपने? अरे भाई हम बताते हैं आपको, इधर देखो इंद्रिय के साथ में तो लगाओ पांच, फिर कषाय के साथ में लगाओ चतुर माने चार, फिर अव्रत के साथ में लगाओ फिर पांच, और फिर क्रिया के साथ में लगाओ इसके बाद वाला 25। अब आगे समझिए, पहले एक दो तीन चार, चार नाम दे दिए, फिर एक दो तीन चार उनकी संख्याएं बतला दी। तो पहले वाले की संख्या इधर, पहले वाला, सेकंड वाले में सेकंड संख्या, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ, किस क्रम से लगेगा? तो इंद्रिया पांच, ये सब आश्रम बतला रहे हैं, सांप्रदायिक आश्रम के कारण बतला रहे हैं अपने कैसे होता है सांप्रदायिक आश्रम, हम ऐसा क्या क्या करते हैं जिससे सांप्रदायिक आश्रम होता है। बोले इंद्रियों में प्रवृत्ति, सांप्रदायिक आश्रम हो रहा है, स्पर्श इंद्रिय की प्रवृत्ति, रसा इंद्रिय की प्रवृत्ति, ग्रहण चक्षु कर्ण इंद्रिय की प्रवृत्ति, दल्लभ के गद्दे पर बैठा है, अच्छी कुर्सियों पर बैठा है, आराम से सराना लगा करके मजे कर रहा है, खेती की ठंडक ठंडक के अंदर बैठा हुआ है, तो स्पर्श इंद्रिय के विषय का भूक कर रहा है, बच नहीं पाएगा, सावधान रहे, उपयोग उधर नहीं जाए, सावधान रहो इंद्रियों के विषयों से, कषाय कर करके कर्म बांध रहा है, इंद्रियों से बांधा कषायों से बांध रहा है, फिर क्रोध, कषायों में क्या क्या है, चार है ना, क्रोध मान माया लोभ, इसे बांध रहा है, कभी गुस्सा करता है, कभी मान करता है, मायाचार करता है, लोभ करता है। आज मेरे दिन का एक लेक्चर था मोना के लिए, मूवी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लिए कॉन्फ्रेंस पर, उसका सब्जेक्ट था मेरा चार कषाय, अनंतानुबंधी आदि चार कषाय, इसलिए क्रोध मान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी आदि कषाय। बोले ये क्या है अनंतानुबंधी, क्या होता है ये कषाय, क्या होती है? तो कषायों को समझो, उनसे बचने का प्रयास करो, कषाय होगी तो सांप्रदायिक आश्रम होगा, इंद्रिय कषाय, फिर अव्रत से भी सांप्रदायिक आश्रम होता है, ये अविरत क्या होता है, अविरत क्या होता है, ये व्रत क्या होते हैं ये बताओ, अहिंसा सत्य चोरी यदि व्रत है तो अविरत क्या होगा? हिंसा झूठ चोरी। व्रत का ऑपोजिट अविरत कहलाता है। अव्रत पांच अव्रत हैं, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के कारण है, होते रहते हैं, चलता रहता है। पाप आश्रमों की चर्चा चल रही है मुख्य रीति से। ये कहता है मैंने क्या पाप किए, मैंने कौन से पाप कर दिए इसमें, तो तुझे अविरत पाप नहीं दिखता है, तूने व्रत ले रखे हैं क्या? व्रत तो नहीं ले रखे। हिंसा करता है क्या? हिंसा तो नहीं करता। तो होती तो है तेरे से? हाँ। अरे भाई ये पाप लग रहा है। झूठ बोलता है क्या? मुकुंद भाई बोलते हो? हाँ कह रहे हो आप। क्या करें, थोड़ी बहुत बिजनेस में इसके बिना काम नहीं चलता बिजनेस में। झूठ चोरी करते हो क्या? नहीं, ये सब समझाएंगे आगे महेंद्र भाई, इस वर्ष नहीं अगले वर्ष। क्या करें, सातवें अध्याय में आएगी चर्चा।
छोटी सी विषय आपकी बात करें शायद पसंद है।
हाँ।
क्योंकि आपने जो अभी बताया अनंत अनुभूति का, एक दो तीन मिनट में जो भी हो सके उनका अर्थ शरीर को बता सके,
क्यों नहीं?
तो अच्छा,
सच्चाई की चर्चा हुई ना सांप्रदायिक आश्रम के संदर्भ में। आपका ये कहना है एक बार संक्षिप्त में ये बता दो आनंदानुमंदी वगैरह क्या है। मैं मार्मिक पॉइंट बतलाता हूँ मैं, जो मैंने दिन में लिया था। ज्यादा लंबाई मान नहीं करूंगा, मुश्किल से दो मिनट में बात करूंगा। पूरा सुनना हो तो थोड़े दिन में प्रज्ञेश भाई अपलोड कर देंगे उसको यूट्यूब पर। तो क्या है चक्कर, मैटर क्या है उसमें? असली मैटर ये है, तुम्हें ये लगता है कि तीव्र कषाय करना अनंतानुबंधी है और मंद कषाय करना संज्वलन है। बोलो, दिल पर हाथ रख कर कहते हैं ना, स्वाध्याय लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा ही लगता है कि नहीं? बहुत तेज गुस्सा आ गया, लगता है अनंतानुबंधी है। बिल्कुल शांत परिणामी दिख रहा है, लगता है संज्वलन जैसा होगा, फिर अनंतानुबंधी दिखती ही नहीं। बोलो, जबकि पॉइंट क्या है? ये जो तीव्रता और मंदता के भेद पड़ते हैं, ये लेश क्या है, ये अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। समझ आ रही है बात? मोटे मोटे तौर पर जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो शिलाखंड की दरार, खेत में चलने वाली हल की दरार, बालू मिट्टी की पानी पर खींची गई रेखा, तो उनसे ऐसा भ्रम हो जाता है हमारे को कि ये देखो देखो तीव्रता और देखो मंद हो गया। नहीं भाई, तीव्रता मंदता के आधार पर पड़ने वाले भेद नहीं है अनंतानुबंधी आदि कषाय। अनंतानुबंधी आदि कषायों का संबंध वासना काल से है। अंदर में धारा प्रवाह सुलगती हुई धारा से चल रही है ना, उससे संबंध है इसका। मैं आपसे पूछता हूँ, एक एग्जांपल मैंने दिया दिन में। मैंने कहा एक सज्जन, आप सोचो आपको अपने जान पहचान में परिचित लोगों में कोई एक सज्जन दिखेंगे, उनका चेहरा आपकी निगाह के सामने आ जाएगा, जिनको आपने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। देखते हुए आप पड़ोस में कहीं कोई परिचितों में, यार हाँ यार ये तो कभी गुस्सा ही, बहुत शांत रहते हैं, बहुत सरल है, बहुत इजी गोइंग रहते हैं हमेशा, लगते हैं कोई 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 ना कोई तो होते ही है ऐसे, जिनको देख करके हमें लगता है यार मैंने मेरी लाइफ में पिछले 40 साल की लाइफ में मैंने कभी इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। बहुत शांत, बहुत सरल स्वभावी है। मैं आपसे पूछता हूँ, सम्यक दृष्टि है? ठीक, सम्यक दृष्टि तो नहीं है तो फिर अनंतानुबंधी है क्या? यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो पूरी की पूरी चौकड़ियां बैठी हुई है कषायों की। तुम क्या मंद कषाय कह रहे हो? तुम्हारे कहने से तो ऐसा लग रहा है जैसे संज्वलन कषाय वाले होंगे, मुनि बन गए क्या? अनंतानुबंधी बैठी हुई है, तो गुस्सा करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं आत्मा की विराजना को। अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं तुम्हें आत्मा नहीं सुहाता है। अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं तुम्हें धर्म की चर्चा नहीं सुहाती है, तुम्हें स्वाध्याय नहीं सुहाता है। ये अनंत क्रोधी है, कितना भी प्यार से बात करता हो, ये अनंत क्रोधी है, आत्मा नहीं सुहा रहा है तुझे, ये चर्चा तुझे नहीं सुहा रही है, धर्म की बातें तुझे सुनना पढ़ना पसंद नहीं है, इसे तू निछले लोगों का काम कहता है, इसे फालतू लोगों का काम समझता है, इसे रिटायरमेंट का काम समझने लगा है। वो काम तुझे इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं सारे दुनिया के, और ये फालतू लोगों के काम है। हम फालतू हैं जो इंडिया से यहाँ आए हैं, ये फालतू लोगों का काम नहीं है भाई साहब, ये सर्वप्रथम करने योग्य कार्य है। ये जो गुस्सा है ना आपका आत्मा के प्रति, और कभी कभी तो पलट करके भी बात कर लेता है, अरे आत्मा फात्मा की बातें हमें पसंद नहीं है, ये तुम्हारी बातें हमारे पास ले रखो। और कदाचित मुकुंद भाई मुस्कुरा करके भी बोले, ये देखो भाई तुम्हारे आत्मा वात्मा की बातें हमें पसंद नहीं है, आनंदानुबंधी क्रोध है, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, हमें मतलब नहीं है तुम्हारे धर्म कर्म से, आनंदानुबंधी क्रोध है। वस्तु स्वरूप की विराधना, केवलियों की विराधना, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा का अपमान, ये अनंत पाप है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ये कोई खतरनाक चीज है। बच्चों सावधान रहो, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान क्या है, अनंतानुबंधी मान क्या है, घमंड। क्रोध में तो अपन ने बंटवारा कर लिया, इसका बहुत तेज गुस्सा था, इसका कम था, तो हमने आनंदानुबंधी अप्रत्यक्ष संजरण में बांट लिया उसको। अब मुझे बताओ मान में कैसे बांटोगे, जिस तरह से तुम बांट रहे थे ना तीव्र और मंद, मान में कैसे बांटोगे, इसको इसको तो बहुत ज्यादा मान है, इसको थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और कम है, कैसे लगेगा। कि सुनो, अपने आत्मा को छोड़कर पर वस्तुओं से अपने आप को बड़ा छोटा मानना, यह अनंतानुबंधी मान है। किससे छोटा मान रहा है, किससे बड़ा मान रहा है, संयोगों से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, ये अनंतानुबंधी का मान है, ये घमंड है, ये बहुत बड़ा। और मायाचारी क्या है, मायाचारी क्या है, अनंतानुबंधी माया क्या है, अपने आप से छल करना, अपने आप से छल करना, धोखा दे रहा है अपने आप को, अपने आप को धोखा दे रहा है। ये कहते हैं मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, किसे धोखा दे रहे हो आप, आपसे ज्यादा आपको और कौन जानता है, आप ही जानते हो अपने आप को, किसको कह रहे हो, किसको दिखा रहे हो आप। ये जो छल है आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानना, ये जो छल है आत्मा के स्वरूप में सुख न मानकर दूसरे स्वरूप में माना, ये छल कर रहा है, ये धोखा कर रहा है, ये धर्मात्मापन का वेश पहन रखा है तूने, धर्मात्मा दिखना चाहता है, अनंतानुबंधी मायाचारी है। और अनंतानुबंधी लोग क्या है, पर के प्रति आसक्ति ही अनंतानुबंधी लोग है। परमा निज बुद्धि थाए से अनंतानुबंधी लोग, परमा निज बुद्धि, निजमा निज बुद्धि थाए तो अनंतानुबंधी लोग चली गये हो, और परमा निज बुद्धि थाए ये मेरा है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये कितनी अच्छी है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, सुनो इसका नाम अनंतानुबंधी लोग है। आप जानते हो लोग क्या चीज है, पैसा कमाने की चाह, उनमें सुख बुद्धि, इनमें सुख है, इसका नाम अनंतानुबंधी लोग है। हमें पता ही नहीं है इनका शयों का, बाहर से फोटो खींचने पर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, लेकिन अंदर में कचायों का तो बारूद बिछा हुआ है। आप जिन सज्जन के बारे में कह रहे थे ना, क्या ये बहुत सरल स्वभावी हैं, हमने इनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, आपको ऐसे लग रहा था जैसे अनंतानुबंधी नहीं होगी, आपने हमारे सामने हमारे से परिचय कराया उनका, तो हमने कभी नहीं देखा, ये तो गुस्सा करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं। मुकुंद भाई आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करोगे तो वो गुस्सा करेगा आपसे जब भी मिलते हैं, क्या आप जब भी उनका परिचय किसी से कराते हो तो आप कैसे कराते हो, ये बहुत अच्छे हैं यार, ये तो बहुत शांत हैं, इतना शांत हैं, बस मुस्कुराते ही रहते हैं, तो क्या होता है क्यों करेंगे गुस्सा, लेकिन फॉर्मूला दें आपको थोड़ी सी चिंगारी दिखाओ, अंदर पाइपलाइन में बारूद भरा है क्या, अंदर पाइप लाइन के अंदर वो डीजल पेट्रोल की धारा बह रही है, और जहां थोड़ा सा छेद होता है वहीं से चिनगारी दिखाओ, बम्बारमेंट होगा, विस्फोट होने लग जाएंगे। ऐसे शांत स्वभावी सरल स्वभावी व्यक्ति का परिचय हमसे कराया और हमने तुरंत पलट करके ये कहा, वहीं उन्हीं के सामने सरल है नहीं है जैसे दिखते हैं। ये ढोंगी है, मैं चेहरा देख करके बतला रहा हूँ आपको, सच में ये ढोंगी है, ये मायाचारी है। ये बोलो क्या कहेंगे, पलट करके सारी बात सामने आ जाएगी। कितने शांत है, ये शांति तब तक ही दिखती है जब तक कोई प्रेम से बोलता है, लेकिन अंदर सच में कचाएं भरी पड़ी है। मौका नहीं मिला, क्रोध करने का मौका न मिलने पर क्रोध कौन करता है? ऐसे तो हम भी बहुत शांत है, ये कहता भी है कभी कभी, वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन कभी कोई कुछ कह देता है ना बस फिर बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो बहुत शांत हूँ मैं भी, क्या मुकुल भाई, मैं भी कभी गुस्सा नहीं करता। आपने देखा कभी मेरे ऊपर गुस्सा, मेरे को गुस्सा करते हुए नहीं देखा आपने? कैसे देखोगे, हमेशा प्रशंसा ही करते रहते। दो चार वाक्य उल्टा सीधा बोल करके देखो तो पता लगे, ये कौन से पंडित को बुला लिया, ये क्या उल्टी सीधी बातें करता है। फिर देखो आप, ये कितना सज्जन कितना ईमानदार है, वो बात निकल करके सामने आती है। अंदर में सब कषाय वाले हैं, ये अनंतानुबंधी आदि कषाये अंदर में बैठी हुई है। अरे निजमा निज बुद्धि नहीं है तो नियम से अनंतानुबंधी कषाये चारों है, क्रोध भी है, मान भी है, मायाचार भी है और लोभ भी है। निज में निज बुद्धि हो गई तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सब चला गया। पर में निज बुद्धि बनी रही तो चारों आ गए, तुमने बुलाया पर में निज बुद्धि करके। ये उपाय है, ये सांप्रदायिक आश्रम के संदर्भ में कुछ बातें आपको यहाँ कही गई, इंद्रियों से कषायों से अवृत से अविरत की प्रवृत्तियों की यहाँ बात करी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये सब अविरत है, ठीक है। फिर इसके बाद में कहा क्रिया, 25 क्रियाएं कही गई है। अब पढ़ लेना शास्त्रों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं कही है, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया है, प्रादोषी की क्रिया, मरने मारने की क्रिया, चक्कू चुरी देने लेने की क्रिया, ये जो प्रवृत्तियां बहुत सारी ऐसी 25 क्रियाओं में उनको बंटवारा कर दिया गया है। तो ये सारी बातें क्रियाओं के संदर्भ में हो गई, समय तो हो गया अपना। अब जो चर्चा है आगे, वो चर्चा बड़ी सुंदर चर्चा है, इतनी सुंदर चर्चा है, इतनी सुंदर चर्चा है कि यदि वर्किंग डे होने की वजह से आपने छोड़ दिया तो पछताओगे। इतनी सुंदर चर्चा है, माने ये कैसे कैसे भावों की अपेक्षा से किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और कैसे इफेक्ट पड़ते हैं वो मार्मिक चर्चा कही है। जीव अजीव की चर्चा, उनका अधिकरण की चर्चा की, संभ्रम समारंभ आरंभ आदि की चर्चा की, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना की चर्चा की, और फिर जो ज्ञानवर्णी आदि जो आठ कर्म है ना अपने, वो आठों कर्म बंधते कैसे हैं, उनके कारण क्या हैं, ज्ञानवर्णी कैसे बंधता है, ओहो दर्शनावर्णी कर्म कैसे बांध लिए जाता है, ये मेरे अंतराय कर्म का उदय कैसे आता है, उनके असली कारणों की चर्चा बहुत मार्मिक ढंग से यहाँ की गई है, जिसकी चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं।
Yeah.